ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
லிங்க தேசேபன சிச்சாயா லிங்க தேஸ்தா தத்சங்கோ ஜீவ உச்சதே அதிஷ்டான சைத்தன்யே லட்சார்த்த வை பிரஜானம். आप प्रज्ञान रूप चिन्ह मात्र अधिष्ठान है, अंतकण उपाधि के कारण आपका अंतकण के वृत्ति के भेद से भिन्न भिन्न नाम हो जाता है। वही वृत्ति में संज्ञान प्रज्ञान वृत्ति ग्रंथ धारणा संकल्प निश्चय अंतकण वृत्ति सब है, अलग 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 वृत्ति के साथ संबंध होकर के चिन्ह मात्र का नाम और उपाधि का नाम भिन्न है। वही उसमें भूत भौतिक पदार्थ सब अध्यस्त है, अधिष्ठान एक अद्वितीय तत्व है। वही लक्ष्यार्थे प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म ये महावाक्य ऋग्वेद का। जो प्रज्ञान है आपका लक्ष्यार्थ, आप अहम 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 करते समय अंतकरण वृत्ति उपाधि को लेकर के अलग अलग नाम हो जाता है। अंतकरण वृत्ति इंद्रिय शरीर के साथ संबंध छोड़ करके जो लक्ष्यार्थ अधिष्ठान है प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जिसमें सारे कुछ ब्रह्मांड अध्यस्त है, वही कूटस्थ चैतन्य प्रज्ञानम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ये महावाक्य है, चार वेद में चार महावाक्य है, उसी का ही सब रूप है। एतम एके वदंत्यग्निम मनु मन्ने प्रजापतिम, इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। मनुष्य में कहा गया, इसको कोई अग्नि देवता आदि कहते, कोई मनु भी कहते, कोई प्रजापति विराट कहते, कोई कहते इंद्र परमेश्वर कहते, कोई प्राण कहते हिरण्यगर्भ, अपरे ब्रह्म कहते नित्य ब्रह्म कहते। वही एक अद्वितीय तत्व है, उसका नाम रूप उपाधि को लेकर के अविद्याकृत अंतकरण वृत्ति को लेकर के नाम अलग अलग होता है। स एतेन प्रज्ञेन आत्मनास्मा लोकादुत्क्रम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामनाप्त्वामृत समभवत् समभवत्। एतेन प्रज्ञेन आत्मना, ये जो कहा गया जैसे वामदेव को ज्ञान हुआ, प्रज्ञेन आत्मना, पहले ज्ञान हो गया था आत्म प्रज्ञ रूप चिन्ह मात्र, अस्मा लोकादुत्क्रम्य अज्ञान के कारण इस लोक में अहम बुद्धि तादात्म्यध्यास था, ज्ञान होने पर इससे पृथक हो गया, पृथक और अपने को भिन्न जान लिया। फिर अमुस्मिन स्वर्गे लोके स्वर्ग स्वरूप आनंद रूप ब्रह्म में सर्वान् कामान् आप्त्वा, जीते जी जब ज्ञान हो जाता है सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो अंत प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप सर्वात्मक हो जाने से सर्वान् कामान् आप्त्वा सारे काम्य वस्तु को प्राप्त करके अमृत समभवत् समभवत्, अमृत मुक्त हो गया, समभवत् समभवत् दो बार कहा गया समाप्ति के लिए। इति ऐतरे द्वितीयारण्य के षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ। षष्ठ अध्याय समाप्त होने ये ऐतरे उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत ये समाप्त हुआ। इसके शांति मंत्र है, ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम आविरा वीर्म एधि वेदस्य म आनिष्ठ शतम मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् संददामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यह प्रेमपुरी महाराज जी के द्वारा रचित ब्रह्मास्मि माला है। प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि है, ये वेदांत का सिद्धांत है। एक अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम भगवान कहते, सर्वम खलु इदम ब्रह्म श्रुति कहती। नेह नाना किंचन कह करके सारे द्वैत प्रपंच का निषेध किया गया। दिखता है किंतु मिथ्या है, मिथ्या में आसक्ति को त्याग करके क्रम से एक एक वासना निवृत्ति करके अधिष्ठान चैतन्य मैं हूँ ये चिंतन करना, यही साधन है। साधन करने के लिए सब मार्ग में इंद्रिय संयम अंतकरण की उपशम सम दम आदि कहा गया। मैं पिछले बार कहा था, ये किसी ने याद दिलाया, ऐसे जीवा रसनेन्द्रिय है, इंद्रिय को जीतने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के जान बुझ करके, जैसे बताया था, भक्ति करते उपासना सब लोग करते हैं, भोजन शुद्ध बनाए परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद पाना चाहिए, ये आवश्यक है। तो भोजन ऐसे बनना है जो परमात्मा को अर्पण कर सके, जो अशुद्ध बने परमात्मा को अर्पण नहीं करे अपने खाए, पचनते थे तो हम पापा पाप ही पकाकर खाते हैं। प्याज लहसुन भगवान को, विष्णु भगवान को, शिव जी को भोग लगाते हैं कोई नहीं लगता है। तो प्याज लहसुन नहीं भोजन पका करके, कोई कहता है प्याज लहसुन छोड़ देने से क्या ब्रह्म मिल जाएंगे, ज्ञान हो जाए मुख्य हो जाएगा? ये है प्याज लहसुन छोड़ने पर मिल जाएगी बात नहीं, सीढ़ी चढ़ने के लिए कितने 10, 15, 20 सीढ़ी जाएंगे तो साथ में पहुंचना है। एक दो सीढ़ी चढ़ करके बोलेगा साथ में पहुंचाना है, 2, 3, 4 सीढ़ी जाने से साथ में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेगी। 2, 3, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो साथ में पहुंच जाएंगे, जहां लिफ्ट नहीं खाली सीढ़ी में चढ़ना है। 2, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो साथ में पहुंच जाना है, उसके बिना पहुंच जाना है? 2, 3 चढ़ने पर नहीं, कि 2, 3 चढ़े बिना नहीं पहुंचते, चढ़ना ही पड़ेगा यदि पहुंचना है। यदि पहले क्या 2, 3, 4, 5 हम चढ़ जाएंगे तो क्या साथ में पहुंच जाएंगे? तो फिर क्या करना, चढ़ना है या नहीं चढ़ना है? हाँ, पहुंचना है तो चढ़ना पड़ेगा। प्याज रसन छोड़ देने मात्र से नहीं, यदि इतने नहीं कर पाए तो परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सके? रसन इंद्र को जी खाली जीवा के लिए उसका कुछ नहीं है। अब कोई कोई अब बताएंगे, वैज्ञानिकों ने बताया, वैद्य लोगों तो बहुत कुछ बताएंगे, जो जो बताएंगे सब खाना है, ऐसा नहीं है। इसको अभ्यास करना पड़ता है। एकादशी व्रत 15 दिन में एक दिन है, फलाहार करने के लिए बहुत चीज है, अन्न भक्षण निषिद्ध है, वो पालन करना चाहिए। और थोड़ा सन्मार्ग में चलने के लिए, जैसे ब्रह्माष्टमी माला का थोड़ा अनुभूत रभावेपी ब्रह्माष्टमी तेव चिंतताम, और क्या कहा था, हाँ ये कहते कंठस्थ करने से क्या लाभ है, कंठस्थ करने पर जो जो कुछ विशेष कुछ श्लोक है कुछ मंत्र है उपस्थित होने से उसका स्मरण होता है। और आगे देखो श्लोक कंठस्थ करने पर अनुभव है, हम पढ़ाते हैं, कहते पंचद्यासी पढ़ाते समय 2-3 श्लोक, एक श्लोक कम से कम याद कर सुनाओ, व्याकरण पढ़ाते सूत्र याद कर सुनाओ। आप देखो यदि 2-4 श्लोक को याद करने के प्रयास करो, संसार भूल करके आप श्लोक याद करने के लग जाना होगा। और जप करने के लिए बैठा हुआ 1 घंटा, मन भागता है, भागेगा। और श्लोक याद करने के लिए मन भागेगा तो श्लोक याद होगा? यदि एक श्लोक कहीं याद कर सुनाओ, हम कहते कभी कभी श्लोक याद नहीं करते, मैं कहता अभी श्लोक याद कर सुना, मैं बैठता हूं 5 मिनट श्लोक याद कर लेते हैं। महात्मा लोग अभी भी कहेंगे श्लोक याद नहीं होता, किस अभी याद करो, इसको बोलो 10 बार बोलो, अहम ब्रह्म मम ब्रह्म अहम ब्रह्म मम, 10 बार बोलो, फिर आगे 1 बार बोलो, एक पाद को 10, 10, 20, 20 बार हो बोलो, याद नहीं होगा? और एक महात्मा डांटते थे, क्या याद नहीं होता है उनके ब्रह्मचारी को, माला लेकर पकड़ो, एक एक सूत्र को बोलो, एक माला जप करो, क्यों नहीं होगा? एक सूत्र, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, एक साथ कहेंगे तो जप नहीं हुआ? ये जप क्यों नहीं होगा? श्लोक बहुत लोग कहते श्लोक याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद करो तो करने से होगा। और करके देखो, याद करते समय मन जितने एकाग्र होता है, इतने एकाग्र आपको जप करते समय कठिन होता है, मन भागता है। इसी प्रकार वेदांत श्रवण में आप जप करते समय मन को जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। वेदांत में यदि रुचि होगी, समझ में आ गया और थोड़ा मनन करने लगो, 1-2 घंटा कहीं से पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। बहुत समय हम वेदांत पढ़ाते हैं महात्मा को, जब शांति पत्र कर सब लोग घड़ी को दिखाए, समय चला गया, एक घंटा दो घंटा गीता ज्ञान यज्ञ यहाँ किए थे पिछले साल, इस साल कैलाश में भी गीता ज्ञान यज्ञ है, सुबह दो घंटा शाम को दो घंटा। तो प्रवचन व्यास जब शांति पाठ करते सब लोग घड़ी को देखेंगे, यार दो घंटा हो गया, दो घंटा जप करने के लिए बैठा, एक घंटा जप करने के लिए घड़ी तो देखते स्वयं भी, किन्तु उसमें घड़ी देखते कब एक घंटा पूरा होगा, वहां भी घड़ी बार बार देखते, पांच मिनट से शुरू होता है घड़ी देखना कब एक घंटा पूरा होगा, ध्यान करते हैं ना, घड़ी देखना शुरू करते कब एक घंटा पूरा होगा, और यहां भी घड़ी देखते कब दो घंटा पूरा हो गया, आश्चर्य होता है क्या दो घंटा हो गया। तो ये कंठस्थ करने पर मन एकाग्र होता है, शास्त्र चिंतन उत्तमम तत्व चिंता साथ मध्यम शास्त्र चिंतनम, शास्त्र श्रवण मनन श्रेष्ठ साधने जप के अपेक्षा, ये बहुत लोगों को विश्वास नहीं करेंगे, ये वेद मंत्र है, उत्तम तत्व चिंता स्यान मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंते तीर्थ भांति अधमा अधमा मैत्री उपनिषद है, उसमें आता है शास्त्र श्रवण मनन निधि ध्यास ने सबसे श्रेष्ठ, वो भी करेगा श्रवण मनन के बाद, श्रवण मनन उसके बाद है और जप उसके बाद निकृष्ट है। तो इस कंठस्थ करना, कंठस्थ करके उसके अर्थ को चिंतन करना, चलते फिरते भी श्लोक याद करके उसके अर्थ चिंतन करे वृत्ति बनती है, श्लोक याद करना और मन एकाग्र करने के लिए साधन है, जैसे जप करना है मन एकाग्र होता है, इसे कंठस्थ करके श्लोक याद करने पर भी होता है। हाँ, साध्या प्रवचन तो करने के बाद मुख्य होता है मनन करना, श्रवण तो होता है शास्त्र में कहा गया, मनन शब्द का अर्थ नहीं स्मरण, मनन करने का तर्क से कैसे संभव है, मिथ्या तर्क से जगत मिथ्या, जगत मिथ्या श्रुति कहती है, और तर्क यही है स्वप्न दृष्टांत से, उसको थोड़ा तुलना करने का है, स्वप्न देखते तो सपने कभी देखा, उठ जाकर थोड़ा बैठ कर चिंतन करो क्या क्या मैंने स्वप्न देखा, कितने असंभव, कैसे सत्य लगा, बिल्कुल मिथ्या है सब सत्य लगा, कैसे सत्य लगा, इसी प्रकार जागृत अवस्था में विचार करें, अभी मुझे लगता है सत्य, क्या ये सत्य है या सपना है, क्या हो सकता है ये सपना भी है क्या, कभी ऐसे विचार करके दोनों का बार बार स्वप्न मापरुक्षण दृष्टा पश्चन सजागर चिंतय अप्रमत सन नुभा मनु दिनम हो विद्यानंद स्वामी ने पंचदश कहा, अपने स्वप्न देखते हो जागरूक देखो, रोज बार बार दोनों का चिंतन करो, चिंतन करने से क्या होगा, चिरम तयो हो सर्वसाम्यम दृष्टा पश्चन सजागरे सत्यत्व भ्रांतिम संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत, चिरम दीर्घ काल देखो दोनों में बराबर समान है, लगता है जागृत अधिक समय स्वप्न कम समय, ऐसा नहीं है, स्वप्न देखते समय लगता है स्वप्न भी बहुत दीर्घ है, दोनों में सर्वसाम्य देकर के सजागरे सत्यत्व भ्रांतिम संत्यज्य, जागरण में जो सत्यत्व वृद्धि है भ्रांति को छोड़ करके फिर आसक्ति का त्याग करता है, आसक्ति त्याग करने के लिए मिथ्या तो बुद्धि करने की आवश्यकता है, और ये कंठस्थ हो ब्रह्मास्म माला उसका यदि रोज रोज करे कंठस्थ भी हो जाएगा, प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मास्म है, वास्तव तत्व अद्वितीय है, अधिष्ठान ब्रह्म एक है, व्यावहारिक भेद है, व्यावहारिक जीव ईश्वर का भेद है, जीव साधन करता है ईश्वर कृपा करते हैं, जीव जप करता है भक्ति करता है उपासना करता है कर्म करता है, उसमें कोई भेद नहीं है, अद्वैत चिंतन करने के लिए व्यावहारिक भेद उपासना भक्ति का कोई विरोध नहीं, समझना है अधिष्ठान चैतन्य व्यापक में हूं, और ये मन में चिदाभास है, ये अपने को अभी मैं इसको बुद्धि के साथ मिला करके इसको मैं मान करके उपासना कर रहा हूं भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा कृपा करे मेरा अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य में व्यापक हूं, बिंब रूप में हूं प्रतिबिंब नहीं हूं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तव स्वरूप तो ब्रह्मास्मि बार बार चिंतन करे, चिंतन करने कोई भेद नहीं, ध्यान भी इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, जैसे अहंग उपासना बताई थोड़े समय ये से श्लोक जैसे बोला फिर थोड़ी देर चिंतन किया, एक अद्वितीय तत्व है शुद्ध ब्रह्म है बिंब रूप चेतन आकाश के समान व्यापक, थोड़े समय जितने हो सकता है अभ्यास करे फिर बाद में उपासना द्वैत चिंतन सब करे, निषेध नहीं है किंतु थोड़ा ये अद्वैत वास्तव सत्य क्या है उसका थोड़ा स्मरण भी तो करे, वास्तव पारमार्थिक सत्य अनुभव नहीं होने पर भी सर्वम खलुविदम ब्रह्म श्रुति अर्थ श्रुति प्रमाण है, वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं, एक अद्वितीय तत्व ही सत्य है, बाकी माया से भिन्न है। अब ये आया था मांडू का कारिका में, यदि जगत वास्तव होगा उसकी निवृत्ति कोई नहीं कर सकता, अनादिकाल से जगत है, अनादि भाव पदार्थ सत्य है तो उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए नाश होता है मतलब ये पदार्थ सत्य नहीं है, कल्पित है तो नाश होगा, वास्तव होगा तो अनादि वास्तव पदार्थ का भाव पदार्थ का नाश होता नहीं। और मोक्ष यदि साधन से प्राप्त होता है, मानेंगे कर्म से भक्ति से उपासना से योगाभ्यास से यदि मोक्ष की प्राप्ति, नया मोक्ष मिलेगा पहले मोक्ष नहीं, ऐसा मानेंगे जिसकी प्राप्ति होगी जिसकी उत्पत्ति होगी ऐसा पदार्थ हो वो भी नष्ट हो जाएगा, नित्य नहीं हो सकता है, नित्य मोक्ष ये सब चाहते हैं। मोक्ष नित्य है तभी नित्य होगा जब मोक्ष अभी भी है, अभी है तो फिर साधन क्यों करेंगे। होने पर भी माला गला कंठस्थ माला भूल गए, माला नहीं माला नहीं, ज्ञान से उसकी प्राप्ति उपचार, ज्ञान से माला कहेंगे माला कहेंगे ऐसा करते, ज्ञान हो गया तो मिल गई, ज्ञान से प्राप्ति। इसी प्रकार मोक्ष नित्य है तभी ज्ञान से प्राप्ति होगी, मोक्ष जो अनित्य होगा तो किसी ज्ञान से कर्म से प्राप्ति हो नहीं सकती। और यदि कोई पदार्थ की प्राप्ति हो जाए नष्ट हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, नित्य मोक्ष है। इसे नित्य अज्ञान से अप्राप्ति भ्रम, ज्ञान से प्राप्ति। अन्य सब साधन है अंतकरण शुद्धि के लिए साधन की आवश्यकता है, किसी साधन का खंडन है आवश्यक अधिकार के वजह से सब ठीक है। यदि वेदांत श्रवण रुचि हो गई, वेदांत श्रवण प्राप्त हुआ तो वेदांत श्रवण से अंतकरण शुद्धि भी होती है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति संयुतार गुरु शुश्रूषया लब्धात कृच्छा शीति फलम लभेत, प्रतिदिन 80 किश्चर का फल प्राप्त होता है। इसलिए वेदांत श्रवण अंतकरण शुद्धि का भी साधन और प्रमाण का विचार होने से प्रमाण से ज्ञान होता है। इसके लिए इसका पाठ कर लेना, पाठ अभी अंत में नहीं हुआ ना, बोलो। मंगलं मंगलाचर्या तथा मंगलकारकं, मंगलं मंगलाराध्यं सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलं, नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृति, नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रत, अहं ब्रह्मा मम ब्रह्म महत् ब्रह्मा महत् तथा, इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वत, कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन, अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वदा, राहुर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मल, मनो मे निर्मलं तद्वज् ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलं, विविच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्य चितिपूर्णकं, विलोक्यानन्दपूर्णं तज् जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः, विद्या विद्या विरोधेऽपि स्वरूपं न निवर्त्यते, तत्त्वमेव तया तस्यास्तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम्, दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशु, न स्वं किं तन्त्रात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतनम्, नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकम्, नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत्, तत्त्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेष्टामृता, लिप्सा स्वाभाविकी तस्य मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। एक श्लोक और। सच्चिदानन्द धर्मं तत् सच्चिदानन्द विग्रहं, सच्चिदानन्द मात्रं तत्
सच्चिदानन्द मात्रं तत्
सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम्,
सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम्, सच्चिदानन्द धर्मं तत् सच्चिदानन्द विग्रहं, सच्चिदानन्द मात्रं तत् सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम्।
एक बार सच्चिदानन्द धर्म बोलो, सच्चिदानन्द धर्मं तत् सच्चिदानन्द विग्रहं,
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत चरणों में वंदन। 23 दिवस का यह अनुष्ठान सत्र गिने तब गिने योग के माध्यम से कहीं से महाराज जी ने यह 23 दिवस तक हमें प्रातः एवं सायं प्रवचन में, और जिस तरह से महाराज जी की प्रवचन धारा चल रही थी, स्वाध्याय के माध्यम से हो या सायं प्रवचन गीता चिंतन माला के माध्यम से हो, अविरत थी। एक एक श्लोक को उन्होंने पूरा न्याय देने की कोशिश की और बड़ी शांति से महाराज जी ने यह हमें अनुग्रहित किया। महाराज जी जैसे हम जानते हैं कि एकादशवें कैलाश पीठाधीश्वर है, और उन्होंने जो ब्रह्मास्मि माला हमें यह प्रदान की, जो पंचम पीठाधीश्वर प्रेमपुर जी महाराज की एक संस्मरण है, जो कई पुराने सत्संगियों को अवगत है कि यह बहुत ही सुंदर इससे यहां प्रेमपुरी के माध्यम, यहां इसका प्रवचन के माध्यम से एवं प्रातः प्रवचन में भी इसका अनुष्ठान होता था। तो महाराज जी ने यह एक पुण्य प्रसाद हमें दिया है। महाराज जी ने यह भी यह एक निर्देश किया कि 8 तारीख को, प्रति 8 तारीख को इसका 27 श्लोक का यहां हम लोग गान करेंगे। तो यह इसके लिए जरूर से महाराज जी नीचे में ट्रस्टी में भी बात हो चुकी है, तो यह हम जरूर से करेंगे। उसकी बुकलेट वगैरह भी छापने की व्यवस्था हो गई है, टूक समय में आ जाएगी। महाराज जी यह जो 23 दिन का सत्र के बाद हम आगे कैसे चले, इसके लिए महाराज जी ने विशेष निवेदन किया था कि प्रातः प्रवचन, विशेष रूप से स्वाध्याय प्रवचन हमें जरूर से सुनना चाहिए, और स्वाध्याय ही वह लक्ष्य है जो हमें, जो ईश्वर को महाराज जी ने बताया कि हम लोग बाकी तो सब ढक सकते हैं, मगर ईश्वर को हम ढक नहीं सकते। ईश्वर को कितना भी ढकने जाओ वो हमेशा दृष्टिमान रहता है। तो उस ईश्वर को पाने के लिए स्वाध्याय एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। महाराज जी तो उनका तो कोई ऐसा हम बता ही नहीं सकते कि महाराज जी की तुलना किसी से करें। अद्भुत ज्ञान है, क्योंकि संतों की जो मूल भूमि है कैलाश, और जिन्होंने वहां जाके दर्शन किए हो महाराज जी के, बहुत ही सुंदर है। कुदरत के बीच में है, वहां मेघधनुष ऐसे लगता है कि जैसे हाथ अभी लगेगा तो छू लेगा। तो यह मेघधनुष ज्ञान भी महाराज जी जो यहां बम्बई पर आके हमें कृपा करते हैं और बताते हैं। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। यह सभी संतों का जो संकल्प है उसकी ही हमें प्रसादी रूप है। फिर से आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए